బోలు తెలుగులు చెప్పు.
ऐसे करके
2000
में ब्रह्मकुमारी में जब हम गए थे तब सभी को बोल दिया 2000 में विनाश हो जाएगा, लेकिन वहाँ फेल हो गया मैं. लेकिन 2036 में लक्ष्मीनारायण का राज शुरू होगा क्या, ऐसे सभी को बताऊँ क्या, ऐसे पूछ रहे.
ब्रह्मा कुमारियों ने जो 2000 बोला वो कहाँ से बोला? क्या मुरली में बताया गया? किसी ने पूछा ब्रह्मा कुमारियों से, आपने 1976 में विनाश की बात कही थी, वो आपने किस आधार पर कही थी? तो वो कहेंगी मुरलियों में बोला कि 1976 में दुनिया का विनाश हो जाएगा, परंतु 1976 में एडवांस पार्टी निकली, उन्होंने 1-2 साल पहले से ही घोषणा करना शुरू कर दी कि 1976 में 500 करोड़ की दुनिया का विनाश नहीं हो जाएगा, जो ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया है उसका विघटन शुरू हो जाएगा. क्या जो ब्राह्मणों की बेसिक की संगम युगी दुनिया है वो जैसे के खलास हो जाएंगे, कौन बचेंगे? जो 1976 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया उस बाप को पहचानेंगे वो ही बचेंगे, और बाकी सब खलास हो जाएंगे. तो वो हुआ, 1976 से ब्राह्मणों की नई दुनिया शुरू हुई कि नहीं हुई? है हुई. और जो ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया थी वो विघटन को पाने लगी, नष्ट हो गई. ऐसे ही एडवांस में जो ब्राह्मणों की नई दुनिया बनी उन्होंने फिर घोषणा की कि 2098-99 में द्वापर युग की शूटिंग समाप्त होगी. शास्त्रों के आधार पर द्वापर के अंत में महाभारी महाभारत युद्ध गाया हुआ है, उसकी शूटिंग कहां होती है? ये ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में द्वापर के अंत में वो युद्ध शुरू हुआ। बेसिक वालों में और एडवांस वालों में युद्ध की प्रत्यक्षता होने लगी। द्वापर में ही दिखाया जाता है कृष्ण का जन्म और द्वापर में ही कृष्ण महाभारी महाभारत युद्ध कराते हैं। वो शूटिंग की घोषणा हुई थी, परंतु ये ज्ञान ऐसा है कि जब तक कोई सन्मुख आकर न समझे तब तक समझ नहीं सकता, और वो बेसिक वाले ब्राह्मण सन्मुख नहीं आए, उन्होंने सिर्फ है टेप रिकॉर्ड में VCD में वो घोषणा सुन ली और वो घोषणा बेसिक वालों में रिले कर दी कि 1999-2000 में दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो ये बाहर की दुनिया की बात थी या अंदर की बात थी? अंदर की बात थी। ऐसे ही फिर बाद में माया सभ्यता की कैसेट निकली, उसमें ये घोषणा की गई कि 2012 में दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो ब्रह्मा कुमारियों ने भी वो भी एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि विनाश की घोषणा से उनके जो फॉलोअर्स हैं वो अपनी सारी जिंदगी का कमाया हुआ पैसा ब्रह्मा कुमारियों को दे देंगे। ऐसा ही हुआ, देने वालों ने दिया, लेने वालों ने लिया। लेकिन बाबा की मुरली की बातें सच्ची होंगी या दुनिया वालों की निकाली हुई माया सभ्यता की बातें सच्ची होंगी? बाबा की बातें सच्ची होंगी। 2012 में कोई विनाश नहीं हुआ। हाँ, बाबा ने ये जरूर कहा है कि जैसे दुनिया में और धर्म पिताएं हुए हैं, उन्होंने 100 वर्ष के अंदर अपने अपने धर्म की स्थापना की है सभी ने, ऐसे ही भगवान बाप जब आते हैं तो कितने वर्ष के अंदर नई दुनिया की शुरुआत और पुरानी दुनिया का विनाश का काम पूरा करते हैं? 100 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा। तो 1936 से लेकर के 37 से लेकर के 2036-37 तक सारी दुनिया का विनाश निश्चित है। वो बाबा के महावाक्य हैं, बाबा की मुरली पर विश्वास करना चाहिए। कोई व्यक्ति की बोली हुई बातों पर विश्वास क्यों करना? हमने ज्ञान सूर्य को पहचाना है, भगवान के रूप में जाना है या भगवान के रूप में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को जाना है या ज्ञान सितारों को जाना है? हमने तो सूर्यवंशी बनने के लिए एक ज्ञान सूर्य बाप को जाना है, उसी को माना है, और ज्ञान सूर्य ने ब्रह्मा के मुख से जो वाणी बोली हम उसी को मानेंगे, हम किसी की बात सुनने वाले नहीं है। और आपने 2000 की बात किससे सुन ली? ब्रह्मा कुमारियों से सुन ली। बाबा ने बोला ब्रह्मा कुमारी कोई राजा कुमारी बनेगी, कोई प्रजा कुमारी बनेगी, तो जिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने दुनिया के विनाश की घोषणा 2000 की वो प्रजा बनने वाली है कि राजा बनने वाली है? वो सब प्रजा बनने वाली है। अब लक्ष्मी नारायण कब होंगे? बाबा ने तो बोला था इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, 1966 की वाणी है। उस हिसाब से 1976 में लक्ष्मी नारायण का जन्म साबित होता है। तो वो लक्ष्मी नारायण जब जन्म लेते हैं तो उनको राधा कृष्ण कहेंगे, प्रिंस प्रिंसेस कहेंगे या लक्ष्मी नारायण कहेंगे? प्रिंस प्रिंसेस हुए। बड़े होने में, विश्व की बादशाही का राज्य लेने में टाइम तो लगेगा ना, तो वो टाइम बता दिया कि तुम बच्चे जो लक्ष्मी नारायण बनते हो उनको नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने में कितना समय लगता है? हैं? कितना समय? 40 साल। 76 से लेकर के 40 ऐड करो तो कितना आता है? 2016-17 आता है। तो लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक बनने वाले हैं वो विश्व के मालिक के रूप में कब से प्रत्यक्ष होंगे? 40 वर्ष पूरे होंगे तभी तो प्रत्यक्ष होंगे। उससे पहले उनको प्रिंस प्रिंसेस कहेंगे, लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे। और लक्ष्मी नारायण भी कौन से? जो नर से पुरुषार्थ करके नारायण बनने वाले हैं। ऐसे नहीं कि नर बन के पुरुषार्थ करें और अगले जन्म में प्रिंस प्रिंसेस के रूप में जन्म लेवे। वो जन्म लेने वाली नहीं, वो तो पुरुषार्थ करके प्रत्यक्ष होने वाले हैं जो नर से नारायण बनते हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी नारायण को ज्ञान के प्रकाश के घेरे में दिखाया है। क्या सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा वो ज्ञान प्रकाश की दुनिया में नहीं होगा? वहां सतयुग में ज्ञान होगा? होगा ही नहीं। ज्ञान कौन से युग में होता है? संगम युग में होता है। तो संगम युग में ज्ञान प्रकाश के घेरे में जिन लक्ष्मी नारायण को चित्र में दिखाया है वो ज्ञान प्रकाश का घेरा पवित्रता का प्रकाश नहीं है। जो देवताओं को दिखाया जाता है मुखमंडल के चारों तरफ, ये तो सारा का सारा शरीर ही उनका ज्ञान प्रकाश के अंदर है, अर्थात उनका सारा जीवन ही ज्ञान प्रकाश में है। और वो ज्ञान प्रकाश किसका प्रकाश है? हैं? ज्ञान सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं है। और बोलो बोलो।
अभी हम लक्ष्मी नारायण के पाल में हैं ऐसा समझ सकते हैं क्या?
लक्ष्मी नारायण की पालना में है। माना हम ये समझें कि हम शिव बाबा की पालना में नहीं है। शिव बाबा पालना देने वाला है, या जो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं नर और नारी, वो हमको पालना देते हैं।
पालन इच्छेदी शिव बाबा नरसिंह नारायण नारी लक्ष्मी ఏటువంటి వాళ్ళు పాలన కాదు కదా, వాళ్ళు మరి ఎప్పుడైనా అనుకోవాలి శివ బాబా పాలనలో ఉన్నాం అనుకుంటే మంచిది. నారాయణ కదన రామ్ కదన కృష్ణ కదన సబ్ ఏక్ బాబా కే బారే మే హై నా.
जो नारायण कहें राम कहें सब एक के बारे में है, लेकिन जिस एक के बारे में है वो अभी पुरुषार्थी नर है कि पुरुषार्थ संपन्न हो गया, पूरा हो गया।
आत्मा पुरुषार्थ संपन्न
क्या है?
संपन्न बन गया बोल रहे, संपन्न बन गया बोल रहे,
संपूर्ण हो गए। फिर मुरली में ये क्यों कहा, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगेंगे।
मेरे तमो प्रधान से सतो प्रधान कावाले 40 संवत्सर पड़ते मुरली एंदुकु संपन्न कालेदु
अनि चेप्पारु चूडुकोरा
40 నుంచి 50 చెప్తారు కదా, ఈ రోజు మురళి వచ్చింది కదక్క 40-50 సంవత్సరాలు చెప్తారు కదా, 76-40 సంవత్సరాలు 2016-17 ఇంకో 10 సంవత్సరాలు చెప్తారు, 40-50 సంవత్సరాలు పట్టచ్చు అని. కాబట్టి 50 సంవత్సరాలు 2017-2027 జగన్ అక్క అడిగారు ఇప్పుడు 2000లో పురితవద్దు బ్రహ్మకుమారి చెప్పారా, ఒకవేళ బ్రహ్మకుమారి చెప్తే మీరు బ్రహ్మకుమారిని అడిగారు అవుతుందా అని? లేదు కదా. అయితే ఇక్కడ ఏదైతే చెప్పడం జరుగుతుందో షూటింగ్ లో జరుగుతుండే ఉండే విషయమే, కానీ మన యొక్క బ్రాహ్మణ ప్రపంచంలో జరిగే విషయమే, కానీ బయట ప్రపంచానికి సంబంధం లేదు. మనం బయట అనౌన్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని అర్థం. మీరు చెప్పి అడిగిన దానికి ప్రశ్నకు సమాధానం, మీరు బ్రహ్మకుమారిలు ఏదైతే చెప్పారో దాని అనుసారం నడుచుకునే వాళ్ళ, శివబాబా చెప్పింది నడుచుకునే వాళ్ళ, అప్పుడు అన్ని మర్చిపోండి. శివబాబా ఒక్కడే సత్యం అన్నప్పుడు ఆయన చెప్పిన మాటే సత్యము, మిగతా వాళ్ళందరూ చెప్పింది అసత్యం. శివబాబా బ్రహ్మ తనువు ద్వారా ఏదైతే మురళిని చెప్పారో ఆ మురళిని గురించే మనం పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి, ఫాలో చేయాలి. ఏదైతే చెప్పారో 1976లో కూడా ఇషారా ఇచ్చారు, లక్ష్మీనారాయణుల జన్మ 10 సంవత్సరాలు తక్కువ 5000 సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది అని. అంటే 66వ సంవత్సరంలో జరిగినటువంటి అవ్యక్తవాణిలో వచ్చినటువంటి పాయింట్ అది. దానుసారంగా 1976లో పరమాత్మ యొక్క లక్ష్మీనారాయణ యొక్క ప్రత్యక్ష జరిగింది. అది ఎంతమంది జరిగింది? కొద్దిమంది మాత్రం జరిగింది. బ్రహ్మకుమారీల యొక్క రూపం కనుకున్నప్పటికీ వాళ్ళలో కొద్దిమంది మాత్రమే పరమపిత పరమాత్ముని గుర్తించారు, లక్ష్మీనారాయణ గుర్తించారు, వాళ్ళ యొక్క సమూహం తయారైంది. వినండి పూర్తిగా, మధ్యలో ఎందుకు కొట్టమాడతారు? చెప్పేది కరెక్ట్ గా వినండి, అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటే. ఇప్పుడేంటంటే 1976లో ఎవరైతే లక్ష్మీనారాయణ గుర్తించారో వాళ్ళు మాత్రం ఒక సమూహం అయ్యారు, మిగతా వాళ్ళతో ఏమైపోయారు? వదిలేశారు వాళ్ళని, వాడు వినాశం అయినట్టేగా. అదేవిధంగా షూటింగ్ పీరియడ్ లో కూడా ద్వాపరయుగం షూటింగ్ అప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఆత్మలు డిక్లేర్ చేశారు ఈ విధంగా వినాశం జరిగిపోద్దని. బయట ప్రపంచంలో ఉండే మాయ ప్రపంచంలో ఉండేవాళ్ళు కూడా 2012లో మహావినాశం అవుతుందంటే బ్రహ్మకుమారులు డిక్లేర్ చేశారు. అంటే ఏం చెప్పారు? మీ దగ్గర ఉన్న సంపన్నత మా తెచ్చిచ్చేసేయండి, అనంత వినాశం ఉపయోగపడదు, తెచ్చేస్తే మాకు ఉపయోగపడుద్ది అని ఆ డబ్బులను తెప్పించుకున్నారు, అయిపోయింది. కానీ వినాశం జరగలే. మురళీ మహావాక్యాలు ఎక్కడా లేదు, 2012లో వినాశం జరుగుతుందని. కాబట్టి ఏదైతే బాబా చెబుతారో దాని మీద అటెన్షన్ పెట్టేవాళ్ళు, మిగతా వాటి ద్వారా వెళ్ళరు. మేము ఆరో చెప్పాము, ఇప్పుడు లక్ష్మీనారాయణ తయారయ్యారంటారా? ఇప్పుడు అక్కయ్య అడిగారు సమాధానం చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు ఈరోజు చర్చంతా అదే కదా, లక్ష్మీనారాయణలు ఇప్పుడు తయారైపోయారా? ఇప్పుడు లక్ష్మీనారాయణ పాలనలో ఉన్నారా, లేకుంటే శివబాబు పాలనలో ఉన్నారా? మీరు అని అడుగుతాం.
వాళ్ళ ధర్మాలు స్థాపించినప్పుడు 100 సంవత్సరాలు వాళ్ళ ధర్మాలు స్థాపన చేశారు. ఇక్కడ బాబా వచ్చినప్పుడు కూడా ఆ 100 సంవత్సరాలే తీసుకుంటారు. 1936లో ఈ యొక్క సంగమిగ మొదలయ్యి షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది. 8 సంవత్సరాలు ఉంటుంది మరి. అన్ని ధర్మాల వాళ్ళు 100 సంవత్సరాలు చేస్తే మనం కూడా 100 సంవత్సరాలు చేస్తాం. కాబట్టి ఆ 100 సంవత్సరాలు లెక్కేసుకుంటే 1936 నుంచి 37 సంవత్సరాలు స్టార్ట్ అయినటువంటి ఇది ఎప్పుడు పూర్తి అవుతుంది? 100 సంవత్సరాలు వేసుకుంటే 2037కి అయిపోతుంది. దాని గురించి ఈరోజు బాబా లెక్క చెప్తారు. మురళీలో ఆ విషయం కూడా చెప్పారు. లక్ష్మీనారాయణ గారు తయారవడానికి 40 నుంచి 60 సంవత్సరాలు పడుతుంది. 76 నుంచి 46 సంవత్సరాల్లో లక్ష్మీనారాయణ తయారవడానికి టైం పడుతుంది. అంటే 2027 వరకు లక్ష్మీనారాయణ గారు తయారవుతారు. తయారైన వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళని గుర్తించడము, వాళ్ళని ఫాలో చేయడము, ఇవన్నీ కూడా అప్పుడు తయారైపోతారు. మిగతా వాళ్ళు వినాశమై పోతూనే ఉంటారు. కాబట్టి ఇప్పుడు లక్ష్మీనారాయణ పాలన వస్తుంది తప్పకుండా. 2036లో వినాశం అయ్యేదే. కానీ ఎవరికి అవుతుంది, ఎక్కడ అవుతుంది మనం ఆలోచించుకోవాలి. పూర్తి ప్రపంచం వినాశం అయిపోతుంది. కానీ మనం అనుకుంది దాంట్లో ఉండకూడదు. బయటకు
రాదు. జితనా వో పూచతే హై ఉసీ కా అనువాద్ కరో, జ్యాదా నహీ. అబ ఆపనే క్యా గలత్ బోల్ దియా హమే తో పతా హీ నహీ చలా. ఇస్లియే జితనా వో బోల్తే హై బాబా కే క్లాస్ మే ఉసీ కా శబ్ద సే అనువాద్ కరో బస్. జితనా బాబా బోల్తే హై ఉస్కా అనువాద్ తెలుగు మే కరో. ఇస్కే అలావా నహీ బోల్నా హై. లంబా లంబా బోలెంగే तो फिर इस कैसेट को दूसरे लोग दूसरे भाषा भाषी सुनेंगे नहीं, कहेंगे ये नहीं चाहिए.
ये माता जी एक प्रश्न पूछा,
जो भी पूछे
ये माता जी ने भी एक प्रश्न पूछा,
जो भी पूछे हैं आप उसका अनुवाद करके हमें बताइए. हाँ जी, और समाधान हो गया है. जो पुरुषार्थी जीवन है वो नर है, मनुष्य है, न देवता है न भगवान है. और जो नर है नारी है वो पुरुषार्थ करते हैं तो किसकी पालना में है? नर से नारायण बनने के लिए शिव बाबा की पालना में है या नारायण की पालना में है? शिव बाबा की पालना में. हम भी शिव बाबा की पालना में, तुम भी शिव बाबा की पालना में. हाँ, क्लास में कोई मॉनिटर हो सकता है क्या? पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में कोई मॉनिटर हो सकता है? बाकी टीचर कौन है? एक शिव बाबा. हाँ,
सत्योग्रहण महीने में 40 या 50 वर्ष का समय तो दिया है, वो अष्ट आत्मा के लिए है या सभी के लिए
है? नई दुनिया बनेगी तो एक आत्मा से बनेगी या एक परिवार की इकाई से बनेगी?
परिवार की इकाई से.
जो भी नई दुनिया बनेगी 100% संपन्न नई दुनिया बनेगी. 1/4% भी कम नहीं. ऐसी दुनिया जो 100% संपन्न हो उसमें थोड़ी आत्माएं होंगी या ढेर की ढेर आत्माएं होंगी? हैं? और थोड़ी में थोड़ी कितनी चाहिए? हैं, आठ होंगी जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते। ऐसा एक परिवार होगा, वो पूरा परिवार, परिवार की इकाई कही जाएगी, और वो एक होगा कि आठ होंगे, कितने होंगे परिवार में? आठ होंगे। हाँ, संपन्न बनने में एक एक सेकंड का अंतर हो सकता है, लेकिन अगर सात हैं तो परिवार की इकाई नहीं। जब तक पूरे आठ का परिवार न बने तब तक नई दुनिया की शुरुआत नहीं कहेंगे। और
साढ़े चार लाख आत्माएं स्थिति में आते हैं ना राष्ट्र में, वो समय हम से साल भी होगा दादा।
40 वर्ष बता तो दिया, नई बुद्धि में आया। 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। कितने वर्ष? 40 इयर्स। कब से? 1976 से। ये नहीं समझे, अनुवाद करते जाओ। वो पूछ रहे हैं कब से?
कब से नहीं बाबा,
कब से संपन्न बनेंगे आठ?
कब से नहीं, सभी साढ़े चार लाख कब संपन्न बनेंगे?
साढ़े चार लाख प्रजा है कि राज परिवार है? क्या है?
सजला राज परिवार होता है,
लेकिन वो संपूर्ण आत्मिक स्थिति में आते हैं ना।
आएंगे, लेकिन प्रजा पहले आत्मिक स्थिति में स्थिर होगी या राज परिवार पहले आत्मिक स्थिति में संपन्न होगा? तो राजाओं के लिए बताया, जो राजाई लेने का पुरुषार्थ राजयोग सीख करके बाबा से बन रहे हैं उनके लिए टाइम बताया। तुम बच्चों को प्रजा के वो बाबा पढ़ाने आया है? बाबा प्रजा योग पढ़ाने आया है कि राजयोग पढ़ाने आया है? तो जो राजा बनने वाले बच्चे हैं, राज परिवार में आने वाले बच्चे हैं, जिनकी संख्या 16,000 बताई, उन 16,000 की ये बात है कि उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगेगा? 40 वर्ष से 50 वर्ष, 40 to 50 years। तो 2027 उसके आसपास होगा, बाकी प्रजा बाद में आती रहेगी। और धीरे धीरे आप कान में कह देंगे, पीछे जो बोल रहा है उसकी सुनेंगे कि नहीं?
बाबा है कुड़जपि में 16,108 पात्र 16,000 मंदिर ने मुझे पेकोनी वाली 40-50 संवस संपन्न कावे बाबा वे प्रजायोग राजयोग ने राजु आत्मल कोसमें ఈ విషయం చెప్తారు 40-50 సంవత్సరాలు అవుతుంది ఎవరు చెప్పండి, మరి చెప్పండి,
ప్రత్యేకంగా
कृमि कीड़े मकोड़े सब होते हैं, कृमि कीड़े मकोड़े आत्माओं का बीज होते हैं, सत्यों में होता है नहीं?
कीड़े मकोड़े
पक्षी पंछी सब ये जीव जंतु है ना बोला सभी आत्मा
जो सतयुग होगा उसमें सतो प्रधान प्राणी होंगे कि तमो प्रधान प्राणी होंगे दुखदाई? तो ये मक्खर और मक्खी और ये मांस खाने वाले जो गीदड़ हैं, हिंसा करने वाले, वो सब होंगे क्या नई दुनिया में कि सुखदाई होंगे? अच्छे अच्छे पक्षी होंगे जो सुंदर सुंदर आवाज करेंगे, देखने में बहुत सुंदर होंगे, इधर उधर चारों ओर गंध भी नहीं करेंगे, पक्षी भी सुंदर होंगे। बाकी कीड़े मकोड़े तो दुखदाई ही होते हैं। वो नई सतो प्रधान सतयुग की दुनिया में कीड़े मकोड़े थोड़े ही हो सकते हैं, मक्खी मच्छर वहां थोड़े ही होंगे, दुखदाई कोई भी जीव जंतु प्राणी नहीं होगा। और
बाबा विनाश विनाश तो विदेश में शुरू होता है सब, विदेश से ही विनाश शुरू होता है सब बोल दिया ना।
विदेश से क्यों? ये कहाँ कहा विदेश से विनाश शुरू होता है? बाबा ने तो कहा महाभारी महाभारत गृह युद्ध पहले होगा, बाद में चतुर्थ विश्व युद्ध होगा। झाड़ के चित्र में देखो ऊपर दो जगह विनाश दिखाया गया है, एक कोने में फिर दूसरे कोने में। एक कोने में जो इधर विनाश दिखाया गया है वो भारत का महाभारी महाभारत युद्ध है, तीन सेनाएं दिखाई गई हैं, यादव कौरव और पांडव, और वो है यादवों का विश्व युद्ध, पेट में से जिनके मूसल निकलते हैं मिसाइल्स, घर बैठे दुनिया का विनाश कर सकते हैं, वो चतुर्थ विश्व युद्ध होगा। तो भारत से पहले विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी या विदेश से प्रज्वलित होगी?
विदेशाल नुंची विनाश ज्वाला प्रज्वलित होने ఎవరు చెప్పారో అది కరెక్ట్ కాదు, కానీ భారతదేశంలోనే గృహ యుద్ధం వస్తుంది, వినాశ జ్వాల ఇక్కడే ప్రజ్వలిస్తుంది, భారత్లోనే వినాశం అవుతుంది అని చెప్పి మొదలవుతుంది చెప్పున్నారు. కాబట్టి ఈ యొక్క మహాభారతదేశంలోనే మన యొక్క గృహ యుద్ధం అనేది మొదలవుతుంది. అక్కడే మన కల్పవృక్ష చిత్రాల్లో కూడా రెండు రకాల వినాశాలు చూపించున్నారు. అక్కడ ఆ యొక్క మిసైల్స్ అనేవన్నీ కూడా తయారు చేసిన వాళ్ళు యాదవులు. ఆ తర్వాత ఇక్కడైతే మన భారతదేశంలో గృహ యుద్ధాలు దీని ద్వారా వినాశం అవుతుంది చెప్తారు. కేదారమే నది గంగా నది కా పాడా గయా నది
గంగాజీ మే వినాశ కి బాడ్ నీ ఆయీ, యమునా నది మే ఆయీ, జహా సే యమునా నది నికల్తీ హై केदारनाथ से निकलती है। तो केदारनाथ जहां है वहां यमुना नदी का कनेक्शन काली नदी से है, काली नदी से काला पानी होगा या गंगा की तरह गोरा पानी होगा, तो वो काली नदी जैसी नदी है जिसकी मिट्टी चिपकने वाली होती है। ये देह अभिमान की मिट्टी है क्या? वो यमुना जिसके जिसके कनेक्शन में आकर के देह अभिमान की नदी बन करके कनेक्शन में आती है, वो देह अभिमान बढ़ाएगी घटाएगी? बढ़ाती है, उसकी चिकनी मिट्टी होती है। और गंगा की मिट्टी रेतीली होती है, कितनी भी शरीर में थोप लो और थोड़ा सा पानी डालो सारा साफ। तो वो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड नदी है। कितने धर्म हैं मुख्य? चार मुख्य धर्म हैं। चारों मुख्य धर्म के चार धाम हैं भारतवर्ष में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, श्रीनाथ और जगन्नाथ। गंगोत्री अलग बद्रीनाथ की तरफ से, और यमुनोत्री अलग केदारनाथ की तरफ से। तो जो केदार धाम है वो यमुना से कनेक्टेड है। यमुना नदी काली नदी है, महाकाली से कनेक्शन है। महाकाली अज्ञान सुनाएगी, काला ज्ञान सुनाएगी, काला ज्ञान जल देगी, या ज्ञान सुनाएगी है काला ज्ञान सुनाती है? वो कौन सा धर्म है जिसमें बहुत काले बन जाते हैं? अफ्रीका के काले बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन से धर्म के हैं? सब इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है। तो इस्लाम धर्म के लिए मुरली में बोला है, ये इस्लामी पहले मरेंगे। क्या कहा? पहले मरेंगे। दुनिया में तो शरीर से मरने की बात होती है, और ज्ञान मार्ग में देह भान से मरने की बात है। तो अब ये टाइम बताया, अभी भी दुनिया में भक्ति मार्ग आगे चल रहा है या ज्ञान मार्ग आगे चल रहा है? तो भक्ति मार्ग की शूटिंग दिखाई पड़ रही है केदारनाथ में, कि इस्लाम धर्म वाली जो आत्माएं हैं वो बूढ़म बोड़ हो रही है। बूढ़म बोड़ बाढ़ आती है तभी तो होता है। नदियों में बाढ़ आती है, कब आती है? जब बाढ़ आती है तो नदियों के पानी में मिट्टी मिल जाती है या नहीं मिल जाती है? ये देह अभिमान की मिट्टी जब ज्ञान जल में मिल जाती है तो जल दूषित तो हो जाता है। जो जल के अंदर जीव जंतु हैं उनको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, जैसे कि अंधे हो जाते हैं। यही हाल है। ये ज्ञान का, दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है और बाद में तमो प्रधान होती है। ज्ञान भी पहले सतो प्रधान और बाद में तमो प्रधान। तो कौन सी आत्माओं के लिए ज्ञान सबसे पहले तमो प्रधान बन जाता है? है जो ज्यादा विकार में जाने वाली आत्माएं होंगी उनके लिए ज्ञान पहले तमो प्रधान बनेगा, या जो निर्विकारी लंबे समय तक रहने वाली होंगी उनके लिए बनेगा? अनुवाद करो इस बात का। जो तमो प्रधान आत्माएं हैं इस्लाम धर्म की, वो ज्ञान जल्दी भूल जाती है, क्योंकि विकारों में गिरने से रिजल्ट क्या होता है, ज्ञान बुद्धि में से उड़ जाता है। तो कौन से धर्म की आत्माओं से ज्ञान पहले उड़ जाता है बुद्धि में से, है इस्लाम धर्म में से। तो वो ही इस्लाम धर्म वाली आत्माएं जिनकी बुद्धि में से ज्ञान जल उड़ जाता है, माने तामसी ज्ञान हो जाता है, वो आत्माएं पहले मरती है। यहां ज्ञान में भी ऐसे ही बाबा ने बताया, ये इस्लामी पहले मरेंगे, देवान से मरेंगे और पहले बाप के बनेंगे। एडवांस के आदि में भी ऐसे ही हुआ था दिल्ली में, क्या चार धर्मों की चार बीज रूप आत्माएं निकली थी, रामायण में उनका नाम दिया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। उनमें से जो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा थी उसने पहले पहले ज्ञान को पकड़ा, एडवांस ज्ञान, एक ही रात के अंदर 9 पेज का उसने पंपलेट बनाई दिया और दूसरे दिन उसे मशीन में जाके साइक्लो स्टाइल मशीन से छपा के और दिल्ली के सब सेंटरों में वितरित कर दिया। इतना फास्ट काम किया। तो एडवांस ज्ञान में दुनिया से पहले ब्रह्मा कुमारियों की दुनिया जो थी उसमें पहले कौन से धर्म के मरे, इस्लाम धर्म के मरे। तो केदारनाथ में जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। और
केदारनाथ लो जरिए అవసరం జరగట్లేదు, జరగాల్సింది జరుగుతోంది, కానీ కేదార్నాథ్లో ఉండే నది మాత్రం గంగా నది కాదు, యమునా నదితో కనెక్షన్ ఉంది, యమునా నది కాళీ నదిలో కలుస్తుంది కాబట్టి అది నల్లగానే ఉంటుంది, నల్లగా ఉంది అంటే వికారాలనే ఇస్తున్నది కాబట్టి ఆ యొక్క దాని యొక్క మట్టి కూడా బురదలాగా ఉంటుంది, ఒంటికి అంటుకుంటే త్వరగా పోదు. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా జ్ఞాన జలముతో పాటు ఈ బురద కలిసి మనం ఒంటికి పూసుకుంటే మళ్లీ ఎంత పూసుకున్నా కూడా అది క్లియర్ అవ్వదు. అదే గంగానది నీళ్లు గానైతే, గంగానది ఇసుక గానైతే ఒకసారి మనం పూసుకున్నా కొంచెం నీళ్లు పోసుకుంటే మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది. కాబట్టి కేదారు మాత్రం యమునానది కనెక్షన్ లో ఉంది, ఆ యమునానది నది కూడా ఇస్లాం యొక్క వాళ్ళ కనెక్షన్ లో ఉంది అని బాబా చెప్పారు.
సాగర్ అందరే మే ఆతే జ్ఞానసూరి కవి అందరే మే నహీ ఆతే.
सागर जमीन से चिपक के रहता है और सूर्य जमीन से सदैव दूर रहता है. तो ज्ञान सूर्य कौन सी आत्मा है और ज्ञान सागर कौन सी आत्मा है? ज्ञान सूर्य शिव है, सदैव ऊंची स्टेज में है, सारी दुनिया को रोशनी देता है. और सागर वो जब आता है तो ज्ञान सागर में प्रवेश करता है. वो सागर पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी किसे कहा जाता है? धरणी को. धरणी कौन है ज्ञान में? कन्याएं माताएं धरणी है. तो जो ज्ञान की धरणी है वो ज्ञान की धरणी ज्ञान किससे लेती है? ज्ञान सागर से लेती है. ज्ञान सागर अलग है, ज्ञान सूर्य अलग है. और
ज्ञान में आने के बाद शरीर छोड़ते हैं, शरीर में ज्ञान में आने के बाद पक्का होने के बाद शरीर छोड़ते हैं,
कौन
कोई आत्मा है?
ज्ञान में आने के बाद पक्का होने के बाद शरीर क्यों छोड़ेंगे? कच्चे होंगे। एडवांस ज्ञान में आ जाएं और पक्के हो जाएं एडवांस ज्ञान में तो वो शरीर छोड़ेंगे हैं कि नई दुनिया बनाएंगे? शरीर छोड़ेंगे हैं? सारे ही शरीर छोड़ देंगे तो नई दुनिया कहां से आएगी?
పక్కా అయిన ఆత్మను శరీరం వదిలేసిన అవసరం లేదు. నర్స నారాయణ నారి లక్ష్మి అంటే వాళ్ళు ఎంబడి వెళ్తారు కదా, కాబట్టి ఇక్కడ పూర్తిగా పక్కా కాని ఆత్మనే శరీరం వదులుతారు. అంతేగాని పక్కా అయిన ఆత్మను శరీరం వదిలే పని ఉండదు. ఇక్కడ అందరూ శరీరం వదిలేసేస్తే నర్స నారాయణ నారి లక్ష్మి వాళ్ళు ఎంబడి వెళ్ళే వాళ్ళు ఎవరు? ఇంకా ఎవరు? వాళ్ళు పక్కా ఆత్మలు కాదు, కచ్చి ఆత్మలు అంటారు. పూర్తిగా పక్వాన్ని కూర్చునేవి కాదు అయ్యి. మీరు పక్క అయిన వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోండి. ఎవరు చెప్పండి? పక్కాగా ఉండే ఆత్మలు శరీరం వదలరు అంటారు బాబా. వదిలేదంటే వాళ్ళు కచ్చగా ఉన్నారని అర్థం. జో కచ్చే ఆత్మ శరీరం చోడ్ దేనా బాబా?
జో జ్ఞాన్ మే కచ్చే హై ఆర్ వో కచ్చే హోనే కే కారణ వో అడ్వాన్స్ మే ఆనే కే బాద్ ज्ञान में कच्चे हैं वो ही शरीर छोड़ते हैं। जो ज्ञान में पक्के होंगे वो शरीर नहीं छोड़ेंगे।
जो शरीर छोड़े हैं आत्मा है वो सतयुग में जन्म लेंगे या नहीं? यहाँ जन्म लेके कंजर क्या बनेंगे?
अरे यहाँ जो ज्ञान में आकर एडवांस ज्ञान में आकर के शरीर छोड़ते हैं उनके बुद्धि में घुसा हुआ है ज्ञान कि हमको इसी शरीर से सतयुग में जाना है। ये ज्ञान एडवांस में दिया जाता है, बेसिक में नहीं दिया जाता है। तो वो अगर शरीर छोड़ेंगे भी तो उनकी बुद्धि में क्या बैठा है कि देह सहित हम नई दुनिया में जाएंगे, इसलिए वो जन्म लेते हैं। जन्म लेकर फिर एडवांस में आएंगे और एडवांस में आकर के तीखे जाएंगे।
వాళ్ళు సత్యుగులు జన్మ తీసుకోరు, ఇక్కడే జన్మ తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ బుద్ధిలో జన్మ బుద్ధిలో ఉంది, నేను ఈ శరీరం ద్వారానే ఆ యొక్క ప్రపంచ స్వర్గానికి సత్యుగారికి వెళ్ళాలి నేను అనే ఆలోచన ఉంది కాబట్టి ఆ యొక్క దాని అనుసారంగానే వాళ్ళు జన్మ తీసుకుని పురుషార్థంలో తీక్షణంగా వెళ్లి సత్యుగులకు వెళ్తారు, ఇక్కడే కంచులుగా అవుతారు
వాళ్ళు.
మీ మాటలు మధ్యలో వాళ్ళు బాగండి. సత్యుగులకు వచ్చేవాడు కనుక ఇక్కడ ప్రాప్తి తీసుకుంటారు. బాబాయ్ ప్రాప్తి ఇక్కడ తీసుకుంటారు అంటే అవును
बोलो क्या बात है?
నమ్మ బాబాకు 50 సంవత్సరాలు తక్కువ అన్నారు కదా, అప్పుడు ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలు 50 సంవత్సరాలు తక్కువ అన్నారు బాబా.
ब्रह्मा बाबा को 50 वर्ष कम हो गए। हाँ
तो 2020 को 50 पूरा हो जाएगा ना, 2020 को
2020 में क्यों 2000 वो 1968 के बाद शरीर छोड़ दिया है ना, 1968 के बाद 2000 तक 32 साल हुए ना, है ना, कितने साल हुए 32 साल, और कितने साल रह गए 50 वर्ष में 22 साल रह गए, 22 इयर्स, तो ये 2000 के बाद 22 इयर्स और जोड़ दो तो कितना आया, 2022 के बाद ब्रह्मा बाबा की सोल संपन्न बनेगी या नहीं बनेगी, हैं?
1969 में बाबा ने छोड़ दिया ना, शरीर छोड़ दिया ना, बाबा ने शरीर छोड़ दिया,
वो तो 18 जनवरी को छोड़ा, 18 दिन निकाल दो, 18 दिन निकाल दो, 68 को गिन लो,
68 అక్కడ 50 కే లెక్కేసుకోండి,
70 दो साल रह गए ना, तो 22 साल हो गए 2000 तक, और 2000 के बाद फिर कितने साल रह गए 50 में, हैं? 18 नहीं, 22 साल के बाद 50 में से 22 निकाले कितने बचे, 28 बचे, तो 28 तक 2028 माना 50 वर्ष जब पूरे होंगे तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने वाले, तो वो तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने वालों की लिस्ट है, राजयोग सीखने वाले जो 108 मण के हैं, तुम बच्चे, तुम माने बाबा के सन्मुख शरीर से बैठने वाले, वो तुम बच्चों की लिस्ट हुई 108, वो 108 की लिस्ट पूरी होने के बाद 2027 के बाद फिर उन चंद्रवंशियों का नंबर लगेगा, उन चंद्रवंशियों में अव्वल नंबर कौन, ब्रह्मा बाबा, तो वो 2028 में संपन्न बनेंगे, वो ब्रह्मा बाबा की आत्मा रुद्रमाला के 108 मणकों में है या बाहर है, है? रुद्रमाला के मणकों के बाहर है वो, भले यहां प्रवेश करके पार्ट बजाएंगे लेकिन वो कंट्रोल होने वाली प्रजा में होंगे या राज्य करने वाले होंगे, आज ही तो वाणी में बताया, वाणी में ही आज बोल दिया, 64 तक भी वो नहीं बने सूर्यवंशी, और 69 18 जनवरी को उन्होंने शरीर छोड़ा तब सूर्यवंशी बन गए, नहीं बने वो, सूर्यवंशी में शरीर से आने वाले नहीं है, जब सतयुग शुरू होगा तब सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के बच्चे बनकर के सूर्यवंशी बनेंगे।
तीन मुक्तियों के साथ आता है ना बेपत, लेकिन छत्तीस सैंतीस में आया है तब वो तीन मुक्ति का पाठ द्वारा एक और में खास शंकर का पाठ करें।
आप तेलुगु में बोलिए, हिंदी में सही अर्थ नहीं निकल रहा है।
जब शिव आता है पृथ्वी पर तीन मूर्तियों के साथ आता है ना, जब 36 37 में आया है तब तीन मूर्तियों की पात्रदारी कौन है? खास शंकर की पात्रदारी।
तीन मूर्तियों के पाठधारी दो माताएं और एक पुरुष। जो एक पुरुष है जिसमें प्रवेश करके ज्ञान की बात क्लियर की वो हुआ परम ब्रह्म, बड़ा ब्रह्म, प्रजापिता ब्रह्म। बाकी जो दो हैं वो सिर्फ ब्रह्मा सो विष्णु बनने वाले हैं, बड़े ब्रह्मा नहीं हैं। उनमें एक का पार्ट विष्णु का है और एक का पार्ट विनाश का पार्ट बजाने वाली महाकाली का है। विनाश कौन करेगा? शंकर विनाश करता है क्या? नहीं, शक्तियां करती हैं। तो शक्तियों में मुख्य शक्ति कौन है जो बहुत मार काट मचाती है? जगदम्बा नहीं, जगदम्बा तो सतो प्रधान रूप है, तमो प्रधान रूप जगदम्बा का महाकाली। तो तीनों जो विनाश की विनाशकारी मूर्ति है वो जगदम्बा भी उस समय मौजूद थी, विष्णु की मूर्ति भी उस समय मौजूद थी, और जो परम ब्रह्म है ओरिजिनल प्रजापिता ब्रह्मा वो भी मौजूद था। बाकी दादा लेखराज को तो सन 47 से प्रजापिता ब्रह्मा साबित किया है मुरली में, उनको टाइटल मिला है प्रजापिता का। वो प्रजापिता थे नहीं, अगर होते तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम क्यों लिखते? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी लिखना चाहिए था, वो नहीं लिखा। जब बाबा ने मुरली में बताया बाद में, तब ब्रह्मा कुमारी बदल करके क्या लिखा? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ये चित्र जो है इनमें दो मुख्य चित्र हैं पुराने, उनमें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखा है, माने तब तक बाबा ने नहीं बताया था, बाद में लिखा गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो दादा लेखराज प्रजापिता ब्रह्मा नहीं थे, वो सिर्फ प्रजापिता के कार्यवाहक थे, उनको टाइटल मिला हुआ था प्रजापिता का। ओरिजिनल प्रजापिता तो वो था यज्ञ में जिसने ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन किया।